चलिए जी, शुरू करेंगे सूरत लुकमान। सूरत लुकमान बहुत ही खूबसूरत सूरत है, एक शख्सियत के नाम पर है। और इस सूरत का आपको आगाज़ सूरत बकरा से मिलता हुआ दिखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, हुदं व रहमतल लिल मुहसिनीन। ये किताबे हकीम की आयात हैं, हिदायत और रहमत नेक लोगों के लिए। कौन होते हैं नेक? जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखरत पर यकीन रखते हैं। और ये कौन लोग हैं? उलाइका ला खुदम में रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। आपको बिल्कुल सूरत बकरा की आयतों के साथ मिलती हुई आयतें लगी। असल में आप देखिए कि अलिफ लाम मीम के फौरन बाद कुरान के हकीम होने की बात हुई। और हकीकत है कि कुरान पढ़ने के बाद जो हिकमतें आती हैं वो इससे बगैर आ ही नहीं सकती। और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो मोहसिन के दर्जे पे जिएंगे। मोहसिन की खूबसूरत तारीफ इधर आपको दिखी। कौन? अल्लज़ीन युकीमुनस्सला, नमाज पढ़नी नहीं बल्कि कायम रखनी और ज़कात का अदा करना और आखरत का यकीन। अगर आप देखें तो ये किसी भी एक इंसान की खूबसूरत तरीन सिफात हो सकती हैं। अब इसके बरक्स एक ऑपोजिट किरदार है और यही आयत हमारी आज की आयत तदब्बुर भी है। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ। और इंसानों में से कोई ऐसा भी है जो कलामे दिल फरेब खरीद कर ले आता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे और इस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अजाब है। इसे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो वह बड़े घमंड के साथ इस तरह रुख फेर लेता है गोया कि इसने इनको सुना ही नहीं, गोया कि इसके कान बहरे हैं। अच्छा, खबर सुना दो इसे एक दर्दनाक अजाब की। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का पुख्ता वादा है और वो ज़बरदस्त और हकीम है। इस आयत पे थोड़ा सा गौर फिक्र करते हैं। आप देखिए कि अगर आयत देखें तो इसमें क्या कहा, लोगों में कोई अपने दौर में ये शख्स जो था वो नजर बिन हारिस था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जब अल्लाह का पैगाम दिया बावजूद 100 मुखालफतों के, आपकी बात दिलों पे असर करती थी। आपकी बात की तासीर से आपके दुश्मन भी इनकार नहीं करते थे। और उन्होंने ये भी देखा कि एक दफा जो इसकी बात सुन लेता है वो इसी के गुनगाता है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि लोगों को इनकी तरफ आने से ही रोक लो। नजर बिन हारिस नाम का एक शख्स था, मुल्क शाम गया। वहां उसने कुछ लौंडियां खरीदी। उस दौर में लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए लौंडियां हुआ करती थी। खरीदा और उनको मक्का में ले आया। जिस शख्स के बारे में सुनता कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुतासिर हो रहा है, कुरान सुन रहा है, नबी की बातें उसको अच्छी लग रही हैं, किसी एक लौंडी को उस पर मुसल्लत कर देता कि जाओ इसको वरगलाओ और इसका दिल लुभाओ गाने बजाने से। उसके बारे में यहाँ बात है। और मैं सोचती हूँ कि उस दौर में एक नजर बिन हारिस था तो कुरान की ये इतनी आयतें उतर गईं। आज तो गली गली कूचा कूचा ऐसे नजर बिन हारिस मौजूद हैं। आज तो नबी की प्यारी उम्मत लाहुल हदीस में खो गई। लाहुल हदीस क्या होती है? क्या होता है लाहुल हदीस? हर वो चीज़ जो मकसद से गाफिल कर दे। कलामे दिल फरेब, दिल को फरेब देने वाला कलाम। और सहाबे कराम में से मेजॉरिटी ने यहाँ इससे मुराद गाना बजाना लिया, म्यूजिक, साज और आवाज। आज देखिए बच्चों के कार्टून्स के नाम पे, बड़ों की खबरों के नाम पे, कहीं इश्तहारात के नाम पे और न जाने किस किस नाम पे आज उम्मत को लाहुल हदीस में नहीं डाल दिया लोगों ने। दुश्मन ने ये बात जान ली। बहुत पुराना किसी का कॉल, इंडिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, किसी ने उनसे कहा कि तुम्हें पता है कि पाकिस्तान के लोग तुमसे दूर हैं या वो जंगी तौर पे असलहे के तौर पे बड़े हो रहे हैं। उसने कहा गम ना करो, ये असलहे और हथियारात में जितना भी आगे बढ़ जाएं हम ही जीतेंगे। क्यों? हमें इतना पता है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, हमारी फिल्में देखकर रात को सोता है। और ये बयान सोनिया गांधी का था, उस दौर के अखबारों में छपा। बात सच है, वो कहते ना कि ये उम्मत खुराफात में खो गई, कुछ रिवायात के मुकल्लद हुए पड़े हैं, रिवायती मुसलमान बने हुए छोड़ते ही नहीं उस दिन को, कुछ ख्वाहिशात के मुकल्लद हो गए। ये नबी की उम्मत आज जो तस्बीह के दानों की तरह पाँव में बिखरी हुई है ना, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार लाहौल हदीस का। बेकार मशगलें, बेकारियात, आप और मैं इससे खुद को और अपने बच्चों को निकालें। हदीस सुनिएगा आज की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो जिना और रेशम, किसके लिए? मर्दों के लिए, और शराब और गाना बजाना और आलात मौसीकी हलाल कर लेंगे। छोटी हदीस चूज कराई है, हालांकि इस मौजू पे बहुत कुछ है, आप इंशाल्लाह जब इन आयतों को डिटेल से सुनेंगे तो आपको उसमें कई हदीसें मिलेंगी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत में भी धसाए जाने का अजाब होगा। एक रिवायत में आता है सुअर और बंदर बनाई जाएंगी उम्मतें, कब? कब, जब उनमें गाने बजाने का रिवाज आम होगा। एक रिवायत में आता है कि इनके कंधों पे गाने वालियां बैठी होंगी, और आज के हेडफोन्स और वॉकमैन लेख लीजिए, इसी की तस्वीर है। गाने बजाने को अरबी में गिना कहते हैं, गिना जिना का दरवाजा खोलता है। आप अच्छे भले बैठे में, अच्छे शरीफाना मूड में, कोई एक ऐसा गाना सुना, किसी की तरफ तवज्जो चली गई, कोई याद आ गया, फिर किसी से मोहब्बत करने को दिल जाता है। याद रखिए, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, 3 घंटे का इम्तिहान का वक्त होता है। वो तालिबे इल्म जो उन 3 में से 1.5 घंटा के लॉ में जरा एक फिल्म देख लो, स्टोरी देख लो, गाने सुन लो, बाकी 1.5 घंटे में कितना भी लिख लेगा, अव्वल नहीं आएगा। आज इस मुख्तसर सी जिंदगी में से उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा वक्त इन बेकारियात में चला गया। ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, आज की शीट के साथ काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह आपको जाएंगी, आप देखेंगे कि कितना टीवी वॉच किया जाता है दुनिया में, कितने कार्टून देखे जाते हैं, क्या कुछ हो रहा है, और इसके जो असरात हमारी नस्लों पे, अल्लाह की पनाह। पिछले पारों में भी आपको सुनाया है कि एक ऐसी ही बेकार चीज़ को देखकर आज बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, ऐसी ही बेकार चीज़ों से होमोसेक्सुअलिटी को आम किया जा रहा है। उन सबको तो छोड़ दें, हम अपने ऊपर लेकर सोचें कि मेरी ज़िंदगी में कितनी बेकार चीज़ें हैं। इतने मुख्तसर वक्त में तो ये नहीं होगा, इसके लिए तो आपको मुझे एक नई ज़िंदगी चाहिए होगी। आपको तो कि जन्नत में हर वो चीज़ होगी जिसको बंदे का मन चाहेगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए इन चीज़ों से रुकें। फिर दूसरी बात देखिए कि हदीस बुखारी की है 5590, खुद जाके पढ़ लें। हलाल करेंगे का क्या मतलब है? कि हलाल नहीं था, लेकिन कई चोर दरवाजों से आज हमें कई ऐसे लोग मिलेंगे जो इसको किसी ना किसी एंगल से जायज करेंगे। किसी जगह पढ़ रहा है कोई, आपकी मजबूरी नहीं, आपके हाथ में नहीं, आपके बस में नहीं, आप फंस गए, वो और बात है, छोड़ दीजिए उसको, ना बहस करें उस पर, लेकिन अपनी खुशी से, अपनी खुशियों को अल्लाह की ना खुशी का जरिया बनाना। और सबसे बदतरीन राग रंग कौन सा होता है? जो दीन के नाम पर दीन में डाला। अल्लाह ताला माफ करे हम सबको, अल्लाह ताला ऐसी चीजों से बचाए। और याद रखिए कि ये अजाब आएंगे उम्मत पे, बहुत खौफनाक करने वाली हदीसें हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी सर्च कीजिए। तो दुआ क्या करते हैं आज के इस पारे की? दुआ सूरत अनकबूत आयत 30, और अब बिन सुरनी अलल कौम अल मुफसिदीन पढ़िए, फिर पढ़िए सब। ऐ मेरे रब, मुझको इन मुफसिद लोगों पर गालिब और इनको अजाब से हलाक कर दे। ये नबी की दुआ पीछे पढ़ी है आपने। मुझे इस दुआ में इस मौजू से जो बात समझ आती है कि वो लोग जिन्होंने इन बेकारियात को आम किया और हमारी नस्लों के अंदर फसाद डाल दिया, अल्लाह ताला हमें उन पर गालिब कर दे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमें अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने पड़ेगा। हमारे बच्चे हमारी क्यों नहीं सुनते? हमारे बच्चे नमाज के लिए शौक से क्यों नहीं उठते? और पढ़ते भी है तो इन्नस सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर का असर क्यों नहीं दिखता? उसकी वजूहात ढूंढेंगे। हमारी आज की टाइम मैनेजमेंट टिप क्या है? बच्चों को अपने साथ मसरूफ करें। जब माँ और बच्चे की मसरूफियत अलग हो गई तो बच्चों ने इन्हीं को माँ बना लिया। आज की बेबी सिटर मीडिया, आज हमारे बच्चे घंटों के एतबार से इन चीज़ों को देखते हैं, हालांकि इसके जो असरात आप दुनिया में देखें, ये हमारी बातें नहीं है, ये कोई मौलवियों की बात नहीं है, ये इन्हीं लोगों की जिन्होंने इन चीज़ों को बनाया वो आज इसके बुरे असरात पे देख रहे हैं। एक मुझे किसी ने आर्टिकल भेजा, आपको भी भेजेंगे, फिजिकली हमारी हेल्थ पर इसका कितना असर हो रहा है, कैंसर के जरासीम को ये कैसे प्रोड्यूस कराता है, ये जो रेडिएशंस आती हैं सारा दिन, ये जिस्म के जाके अंदर के सिस्टम को कितना डिसऑर्गेनाइज करते हैं। फिर जो एडवर्टाइजमेंट, मॉडलिंग, फैशन के नाम पे चीज़ें देखते हैं, उससे खवातीन कितनी डिप्रेशन में जा रही हैं, और जो बच्चे बैठे हैं इस चीज़ों को देख रहे हैं। किसी ने एक मिसाल दी कि आपको किसी कमरे में कोई बंद करे और आपके बिल्कुल सामने काली तस्वीर लगा दे, काली दीवारों, ब्लैक, डल ब्लैक, और आपसे कहा जाए कि इसको देखो, और वो उन्होंने ये करवा के तजुर्बे किए, हैरतनाक किस्म के आंखों की विजन कम होती हुई दिख रही है, दिमाग से सोचने की कैफियत है, और एंड पे वही बात है डिप्रेशन। आज छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन क्यों है? तो अपने बच्चों को अपने साथ मसरूफ करें। पहली माएँ खाना पकाती थी तो बच्चियाँ साथ जाके रोटी आटा लेके बैठ जाती थी, घर की झाड़ पूंछ की तो बच्चियों ने हाथ में झाड़न पकड़ लिया, बेटे बाप के पीछे फिरते रहते थे, बच्चियां जो थी माओ के पीछे। वापस उस कल्चर को लाइए, अगर आपने मैंने इसकी कोशिश करनी है। अभी आगे हम लुकमान के अपने बेटे को नसीहतें पढ़ेंगे तो उस पर इस बात को मजीद समझ लेंगे। अभी इतनी बात याद रखें, आप कहते हैं हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, दीनी स्कूलों में उनको भेज दें, मदरसों में भेज दें, उनको आपकी ज़रूरत है। एक होती तालीम, आपको इल्म मिल जाता है किताबों से, एक होती है तरबियत। तरबियत के लिए क्या करना चाहिए? किसी ने किसी आलिम से पूछा कि मैं अपने बच्चों को नमाज से मोहब्बत कैसे दिलाऊं, तो जवाब बड़ा अनयूजल था। कहा इसका नुक्ता आगाज, बच्चे को पहले अपने से मोहब्बत करना सिखाओ, अपने बच्चे के दिल में तुम अपनी मोहब्बत डालो, इस मोहब्बत से जब वो तुमसे प्यार करने लगेगा फिर तुम्हारी बात पे भी प्यार करेगा, और एक वक्त आएगा कि वो अच्छा मुसलमान बन जाएगा। बात भी यही है, तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम अपने बच्चों को प्यार भरा वक्त दें, और कभी बच्चे आ भी जाएं साथ तो डांट डपट पढ़ो। ये जो हम अक्सर कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को बहुत वक्त देते हैं, झूठ कहते हैं, जुमला बदलिए, ये आपके बच्चे आपको वक्त देते हैं। यानी आप कहते हैं होमवर्क करो, तो आपके कहने पे बच्चा आपके साथ बैठ गया होमवर्क करवा रही है, आपके कहने पे बच्चा आया, नमाज पढ़ो, खाना खाओ, ये आपका बच्चा आपको वक्त दे रहा है। आप कैसे बच्चे को वक्त दें जब आपका बच्चा आपसे कहे मामा इधर आए बात करते हैं। बच्चे घर जाते हैं, स्कूल से आते हैं, पहले बैठिए, नमाज का हुक्म देना, नमाज सिखा दी, रुकू, क्याम, सजदा, वजू, वितर सब सिखा दी, ये इल्म है। तरबियत क्या है? कि प्यार से उस बच्चे से पूछो, आज क्या सूरत पढ़ी है मेरे बच्चे ने, आज नमाज में क्या सोचा, बच्चों से करीब होकर घुल मिलकर उनसे दीन की बातें करें। अच्छा मेरे बच्चे ने आज स्कूल में क्या अच्छा काम किया, इसके लिए फिर आपको मसरूफ करना पड़ेगा, मशगूल करना पड़ेगा, गले से लगाइए, उनके हाथ चूमे, बचपन में क्यों सारा प्यार कर लिया आपने? छोटे बच्चे को जीने नहीं देते, बिगाड़ने की हद तक प्यार करते हैं, और बड़े होते हैं तो बर्दाश्त ही नहीं हम उनको करते। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। फिर इसके बाद आज का वक्त ज़ाया करने वाला काम, टाइम वेस्टर, लहवल हदीस, आप और मैं अपनी जिंदगी से खुरच के निकाल दें लहवल हदीस को, अगर किसी मकसद के लिए जीना है, और अगर बेमकसद जिंदगी है तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी कीजिए। देखिए अपनी जात से कोई चीज़ बुरी नहीं होती, आप कहते हैं टीवी बुरा, तो इस वक्त भी तो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये किस पे देख रहे हैं? स्क्रीन पे देख रहे हैं। बंद टीवी बुरा नहीं होता, चलता हुआ भी बुरा नहीं होता, उसके अंदर आता क्या है, उससे आपका मेरा क्या अमल है? आज की काबिले तकलीद शख्सियत लुकमान है, जहां आयत आएगी वहां उनके बारे में बात करेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे वक्त को लाहवल हदीस से पाक कर दे और कारामत चीजों में ले आए। सारी बात का खुलासा यह है, खुद भी मसरूफ हों और बच्चों को भी मसरूफ करें। आइए आगे देखते हैं, अल्लाह ताला ने ये वादे तो हमसे कर ही लिए, फरमाया आयत नंबर 10, खलक समावाती बिगैरी अमदिन तरौनहा वल काफिल अर्दी रवासिश, इसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आए, इसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक न जाए। सोचिए जरा, फुटबॉल की तरह घूमती हुई जमीन होती, आप चूल्हे पे हंडिया डालते, एकदम लुढ़कती, सारा खाना गिर जाता। ये पहाड़ जो है ना, ये जमीन की मेखें हैं, अल्लाह हमें भी ढुलकने से बचाए। इसने हर तरह के जानवर जमीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगा दी। ये तो है अल्लाह की तख्लीक। अब जरा मुझे बताओ, इन दूसरों ने क्या पैदा किया है? असल बात यह है कि ये जालिम लोग सरी गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह हमें कायनात पे गौर व फिक्र की तौफीक दे। अब यहाँ से लुकमान की बात है। यही लुकमान है जिनके नाम पर ये सूरत है। ये कौन थे? पहली बात है कि ये नबी तो नहीं थे, जिसको हमारे यहाँ कह लीजिए हकीम उम्मत। हमारे कल्चर में अल्लामा इकबाल को एक हकीम के तौर पे पेश किया जाता है। अरबों में घर घर में लुकमान नाम के हकीम का तस्करा था। इनके सहीफे थे, अकवाले ज़रीं थी। जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो कई लोगों ने उन सहीफों को तलब कर दिया कि अब हमें इन बातों से ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल गई है। लुकमान की जो पहली बात अल्लाह ने इस आयत में की है वो क्या है? वलकद आतैना लुकमान अल्हिकमता निशकुर लिल्लाह। तारुफ है, पहला जुमला, हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि वो अल्लाह का शुक्रगुजार हो। हिकमत और शुक्रगुजारी, हिकमत का सार शुक्रगुजारी है। जितने आप शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं, ग्रेटफुलनेस है आप में, उतनी अल्लाह आपको हिकमत देगा। नेमतों को देख करके अल्लाह शुक्र है तूने नेमत तो दी, बंदे नेमत आपको देने में मददगार है तो उनके शुक्र गुजार हो। और जिसमें शुक्र गुजारी नहीं शिकवा गुजारी है ना, उसके अंदर हिकमत कभी नहीं आएगी। अल्लाह के नबी की एक हदीस का खुलासा है, रासुल हिकमती मखाफतुल्लाह। हिकमत का सर अल्लाह का खौफ है। जितना तकवा बढ़ता जाएगा उतनी हिकमत आएगी। अल्लाह हमें हिकमत भी दे और हमें तकवा भी दे। दूसरी बात, जो कोई शुक्र करे इसका शुक्र इसके अपने ही लिए मुफीद है, और जो कुफर करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आप से आप महमूद हैं। लुकमान क्यों इतने हकीम थे या उनकी क्या बात थी, इस पे बहुत सारे वाक्यात आते हैं। कहते हैं गुलाम थे, हबशी थे। अल्लाह रंग नहीं देखता, अल्लाह माल नहीं देखता। इनके आका ने एक दिन इसको बुलाया और कहा, जाओ बकरे की सबसे अच्छी चीजें लेकर आओ। ये गए और उसका दिल और उसकी जुबान लेकर आ गए। दोबारा भेजा, कहा जाओ अब बकरे की बदतरीन चीजें लेकर आओ। दोबारा गए तो यही ले आए। कहा ये क्या बात है? कहा जी आका, अगर इनका अच्छा इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन है, और बदतरीन इस्तेमाल करें तो ये बदतरीन है। ये होती है हिकमत। किस तरीके से उन्होंने चीजों को लिया, तो अल्लाह ताला ने इनको खास हिकमत दी थी। अब अगला पूरा रुकू इनकी इस हिकमत की दलील है। औलाद की तरबियत में क्या तरतीब मलहूज रखी जाए, इसको पढ़िए और अपने अमल को भी देखते रहे। बस दफा कसूर हमारा अपना ही होता है। हम अपने बच्चों को कहते हैं, अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से पेरेंटिंग की तौफीक दे। मैं ये पूरा रुकू साथ पढ़ूंगी, बीच में हल्की सी वजाहत के साथ, लेकिन फिर एंड पे जो भी बात होगी उसको हम देखेंगे। फरमाया, वइस काल लुकमान लिबनिही वहुवा याइज़ुहू। याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। तो पहला तो ये नुक्ता लिख लें, करनी पड़ेंगी नसीहतें बच्चों को, बेटों को भी बेटियों को भी। ये पढ़े लिखे नहीं आए पीछे से। जैसे आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, ए बी सी सिखाई, अलिफ बा ता सिखाई, तो आपको इनको जीना, मैनर्स, एटिकेट्स, दीन भी सिखाना पड़ेगा। तो इसने कहा, बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। पहली चीज बच्चे को शिर्क सिखा रहे हैं। हम में से तो कई लोग बूढ़े होने के करीब आ गए, अभी इस पे बात ही नहीं करते। क्यों? शिर्क ही सारी बुराइयों का सिरा है। कैसे अल्लाह की शिर्क से बच्चों को रोके? हम माएं खुद सिखाती हैं, बेटो जल्दी कर लो मेहमान आ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। आप अपने बच्चों को अगर इस बात का कॉन्शियस करें ना कि लोगों के आने के सामने बहुत अच्छे बिहेव करना, अकेले में खैर है माँ के सर पे चढ़ के नाचो, तो ये शिर्क है। पीपल कॉन्शियस बना देना बच्चों को, ये शिर्क सिखाना है। और कोई बच्चे जाकर कब्रों पे सर तो नहीं रखते, बुतों के आगे तो नहीं बैठते। तो हमेशा बच्चे की मोहब्बत बढ़ाएं। फिर दूसरी, मामा ने दिया, बाबा लेकर आए हैं, पापा ने दिया, नहीं अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने कहा कि मामा को कि ये दे दो, तो मामा दे रही है। हर चीज में अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़िए। हक यह है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और हकीकत यह है कि हमने इंसान को अपने वालदैन का हक पहचानने की खुद ताकीद की है। यहां देखिए, इनडायरेक्टली अल्लाह का यह जुमला है, खुद नहीं कहा, यह हिकमत का दूसरा अमल है। अपने हकूक ना अपने बच्चों को बताएं कभी। और हमारे कल्चर में अल्लाह माफ करे, जब बच्चे या बच्ची को दीन की महफिल में ले भी आए ना, तो कानों में कहते हैं, जरा इसको माँ बाप की तमीज सिखाओ, इसको तहजीब सिखाओ, इसको बोलो, अल्लाह ने या लुकमान के थ्रू नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है। इससे क्या पता चलता है? अपने बच्चों को रब से जोड़िए, वो आपसे जुड़ जाएंगे। हमने अपने बच्चों को कटी हुई पतंगों की तरह छोड़ा, वो हमसे भी कट गए। तो अपनी बात खुद ना करें, किसी और से कहलवाएं। इसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी उठाकर इसे अपने पेट में रखा और 2 साल इसका दूध छूटने में लगे। इसीलिए हमने इसको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर और अपने वालदैन का शुक्र बजा ला, मेरी ही तरफ तुझे पलटना है। ये एहसास दें अपने बच्चों को कि एक वक्त आएगा तुमने अपने रब के सामने खड़ा होना है। हर बात की जवाबदेही अपने ऊपर ना लिया करें, मुझे बताओ। और हम किसकी तरफ पलटाते हैं? आ ले तेरा बाप, तेरे बाप को बताती हूँ। क्या करेगा मजलूम बाप? आप जिससे नहीं डरती हो, आपका बच्चा डरेगा उससे? नहीं बेटा, अल्लाह आपका मामला है। पहले अल्लाह से मोहब्बत करवाएं बच्चों को। आप तड़प कर बच्चों को अल्लाह की मोहब्बत सिखाएं। ये माँ के दूध से जाती है और माँ की लोरियों से जाती है ये मोहब्बत। और माँ के दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, ये पेट के अंदर से ही आ जाएगी साथ। जरूरत है इस बात की कि माएँ खुद अल्लाह से प्यार करने वालियां हो जाएं। लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो इनकी बात हरगिज़ न मान। ये क्या सिखाया जा रहा है भाई छोटे से बच्चे को? पीयर प्रेशर में मत आना। अल्लाह रहम करे, आज शादी के बाद तक बच्ची को ये नहीं पता होता कि शौहर की गलत बात माननी है कि नहीं माननी, सास की गलत माननी है कि नहीं माननी। देखिए, अपने बच्चों को बताइए, ला तअली मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। आज तक हमें क्यों नहीं आई? हम लोगों से डर के फिर भीगी बिल्ली बन के चुपके से पहुंच जाते हैं, हमारे बच्चे क्यों ना पहुंचे? ये बात अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा गलत बात नहीं माननी, नो कॉम्प्रोमाइज। दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करता रहा है, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रजू किया। यानी कभी तुम्हारे माँ बाप और उस्ताद की राय में कॉन्ट्राडिक्शन हो, माँ बाप कुछ और चाहते हैं, उस्ताद की तालीमात कुछ और हैं, तो बात उसकी मानो जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। हाँ, माँ बाप के साथ सलूक अच्छा रखे, बदतमीजी नहीं। टीचर नहीं बनना उनका, उनको हदीसें नहीं सुनानी, बढ़ बढ़ के नहीं बोलना, स्माइल, काम अच्छा करते जाएं। फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है। फिर उस वक्त मैं तुमको बता दूंगा कि तुम कैसे अमल करते रहे। या बुनैया इन्नहा इन्तकुम मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दल। और लुकमान ने कहा, बेटा कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों में या जमीन में कहीं छुपी हो, अल्लाह इसे निकाल लाएगा। होगा उनका तस्किया कि नहीं? छुपी हुई चोरियां भी अल्लाह निकाल लेगा। तुमने किसी का रबड़ भी चोरी किया तो अल्लाह उसको भी निकाल लेगा। देखिए, यहां छोटी सी बात समझिए, किस खूबसूरत तरीके से माँ बाप बच्चे का तरबिया कर रहे हैं और बच्चे की करेक्टर बिल्डिंग करते हैं। मिसाल समझिएगा, बचपन से हम पेंसिल और शार्पनर रखते रहे। पेंसिल जब कोई चीज लिखती है खिंच जाती है, फिर शार्पनर उसको छोटा करता है, और दिन ब दिन पेंसिल छोटी होती जाती है और जो लिखा हुआ है वो ज्यादा होता जाता है। माँ बाप और बच्चों की मिसाल भी पेंसिल और शार्पनर की होती है। दिन ब दिन माँ बाप हमें नसीहतें करते करते छोटे हो रहे हैं, लेकिन उनका फर्ज है कि वो हमें शॉप करें। वो खुश होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, हम दुनिया से जाने वाले हैं, हमें ये पता है कि तुम इस पेंसिल से जो चीजें लिख रहे हो वो अच्छे लिख रहे हो, तो तरबियत से गाफिल ना हो। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बाप तो मसरूफ हमेशा से ही थे, माएं भी मसरूफ हो गई। वो बस अब दूसरों के बच्चे जाके पाल रही होती हैं और अपने बच्चे नॉन मुस्लिम बेबी सिटर को दिए होते हैं, जो मर्जी इसको दिखाओ और सुनाओ क्योंकि वक्त गुजारना है। पैसे भी लेती हैं और आपके बच्चे भी बिगाड़ते हैं। जिस माँ को अपने बच्चे के लिए वक्त मिल गया, उसका बच्चा नहीं बिगड़ेगा, शर्त यह कि माँ अल्लाह से जुड़ी हो। वो बारीक बीन भी है और बाखबर है। बेटा नमाज कायम कर। अब नमाज की बात है, पहले इतनी करेक्टर बिल्डिंग की बात हो गई। नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर, और जो मुसीबत भी पड़े इस पर सब्र कर। देखिए, नमाज का हुक्म 7 साल में, फर्जियत 10 साल में। ये 3 साल हैं फोकस्ड करने के नमाजों के। बहुत छोटे बच्चों को भी नमाज का कहना शुरू कर देना तो शुरू करेंगे ना, इस उम्र तक आगे छोड़ चुके होंगे। ये भी गैर हकीमाना बात है। दूसरी बात, नेकी का हुक्म दे। क्या मतलब, हमारे बच्चे तबलीगी बन जाए? ये कैसे दें, जाके चौक पे खड़े होकर दावत दें? ये नेकियों के हुक्म वो किसको देंगे? ये अपने क्लास फेलोज को देंगे। झूठ नहीं बोलते, किसी की चीज खराब नहीं करते, ये डेस्क पे लिखते नहीं है, ये किसी का पेन नहीं चुराते, और बदी से मना कर। अगर बचपन में बच्चों को माने ये तरबियत दी हो तो आप बताइए कभी भी वो बिगड़ेंगे। और जो मुसीबत भी पड़े इस पर सब्र कर, क्या मुसीबत पड़ती है इन मासूमों पे, इनकी चॉकलेट भाई खा गया और इनकी पेंसिल कोई दोस्त ले गया, वो आसमान सर पे उठा देंगे आपके बेटा जी, सब्र कीजिए। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। और अगली बात तो बहुत ही अहम है, करेक्टर बिल्डिंग में जाहरी पोस्चर, हाल हुलिया क्या, और लोगों से मुंह फेर कर बात ना कर। आज कई बच्चे मुंह फेर के बात करते हैं, किनसे, माओ की दोस्तों से और बापों के दोस्तों से। पहले घर में मेहमान आता था तो बेटी टैकल कर लेती थी, चाय पानी पिला के भेजती थी कि मामा घर नहीं है, मैं तो हूं। आज बाहर से कह दो, मॉम इज नॉट होम, सलाम अलैकुम, फोन पे मॉम नहीं है, बंद। ये जो गर्दने मुंह फूले होते हैं ना, अकड़े और ना जमीन पर अकड़ कर चल, चाल को देखिए, कपड़े ही ऐसे पहना दिए अकड़े हुए फंसे हुए कि चाल ही अकड़ गई। अल्लाह किसी खुद पसंद और फख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में इत्तेदाल इख्तियार कर। घर में धमा चौकड़ी चल रही होती है जब बच्चे होते हैं, दरवाजे पीट रहे हैं, टूट रहे हैं, भाग रहे हैं, कुर्सियों से टकरा रहे हैं, नहीं, इंसानों की तरह चलो, एतदाल से चलो, बचपन से सिखाइए। मुझे तो ऐसे लगता है कि बाज़ माओं ने तो सोच रखा है कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, और ख़ास तौर पे जब कहीं जाना है। वजह क्या है कि कोई बात नहीं, मस्जिद में ही आए हुए हैं ना, तोड़े मस्जिद के दरवाजे, टॉयलेट पेपरों को जाकर रोल उतार उतार के बिन में फेंक के माए मजे से खैर बातें करिए, कोई बात नहीं, हम दीन के लिए आए हैं, और बच्चे तबाही मचा रहे हैं मस्जिद में। और अपनी आवाज़ ज़रा पस्त रख, सोचिए, आवाज़ें पस्त, बच्चे की आवाज़ कभी माँ बाप की आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए, लिख ले। हर साल मैं इस पर ये बात करती हूँ, अपने बच्चों को सिखाइए, दूर खड़े मामा मम्मी बाबा नहीं, तमीज से आओ, बात करो, करीब आओ, यहाँ आके बात करो, क्या चाहिए, टॉवल चाहिए ले लो, पैसे चाहिए पकड़ो। कभी अपने बच्चे की बात का जवाब ना दें जब वो आपको दूर से पुकारे, और कहाँ फिर वो शाउट करें, चीखे। बचपन की सिखाई भी आते हैं भुगतनी पड़ती है सारी उम्र, पहले माओं पे चीखते हैं फिर बीवियों पे चीखेंगे, और सारी उम्र ही चीख चीख के सारी दुनिया को परेशान करेंगे। तो बच्चों की आवाज़ें हल्की हों, क्यों, सब आवाज़ों से ज़्यादा बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ होती है। और मैं तो इस आयत पे कहती हूँ कि अक्सर लोग अपने बच्चे को इंसान समझ के नहीं पाल रहे होते, कुछ और ही समझ के पाल रहे होते हैं, और कोई टोके रोके कहते बच्चा है, छोटा है, अभी लाडला है, अभी पहला है, अभी पोता है, अभी नवासा है, फिर अब आखिरी है, अब घर का लाडला है, अब ये। याद रखिए, मैं और आप अपना जिंदगी का वक्त पीछे नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने बच्चों की इसलाह की सूरत में और अपने बच्चों की नहीं कर सके ना, तो पोतों नवासों ही की कर लीजिए जिनके हैं। अब आप देखिए कि ये सब कुछ हमने पढ़ा, आपको लग रहा है हिकमत वाले माँ बाप ऐसे होते हैं, कम लफ्जों में ज्यादा फायदा। माएँ कहती हर वक्त बोल रही हूँ, 100 दफा कह, 1000 दफा कह, ये आपकी कमी है। देखिए मैं आपको एक चीज सिखा रही हूँ और ये आपको नहीं समझ आ रही, दोबारा 10 दफा मैं सिखाऊँ और आपको समझ ना आए ना, और किसी को भी ना आए, तो दैट मीन इट्स माई मिस्टेक, मुझे नहीं सिखाना आ रहा, मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ। अच्छा टीचर कौन होता है, बात ऐसे हल्की फुल्की की आसानी से कि सबको समझ आ गई। अगर आपको अपने बच्चे को बार बार कहना पड़ता है तो सॉरी टू से, कसूर उसका नहीं आपका, जाके चेंज कीजिए अपना स्टाइल। फिर आप देखिए कि अपने बच्चों से किस तरह का प्यार करें कि जो उनको बिगाड़े नहीं। देखिए छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, जिसका दिल करता है उसके मुंह में कुछ आके डाल देता है, कोई आया बाहर से चॉकलेट ले आया, कोई आया लॉलीपॉप ले आया, तीसरा आया चिप्स का पैकेट ले आया, क्यों भाई, ये इंसान का बच्चा है, इसकी जिंदगी एक मकसद के साथ है। देखिए अल्लाह ताला जब हमें बच्चा देता है तो बोलता हुआ नहीं होता, सुनता तो है ना, सांस भी ले रहा है, कुछ चीजें हमारे हाथों में बच्चा सीखता है ना, जैसे बोलना, मेरा 1 साल का बच्चा बोल ही पड़ता, अब तो मेरा 6 मामी बोलते होंगे जितना उनके इर्द गिर्द बोलते हैं हम ना। ये आपको मुझे मौका दिया जाता है, अल्लाह ताला चाहते बिल्कुल रेडीमेड टेलर मेड बच्चे बाहर आ जाते हैं, पैदा होते ही ईसा बोल उठे तो ये भी कह देते, इन्नी अब्दुल्ला, मामा दूध दे दो, पानी दे दो, चॉकलेट दे दो। अल्लाह ने माँ को कहा तू सिखा इसको बोलने का तरीका, और आप आजमा के देखें, 10 लोग जहन में ले आइए, जो माँ का बोलने का स्टाइल है बच्चों का भी वही है, जो माएँ ऊँची बोलती हैं उनके बच्चे भी ऊँची बोलते हैं, जो चीखती हैं वो भी चीखते हैं, और जो माएँ प्यार से बोलती हैं उनके बच्चे भी प्यार से बोलते हैं, और जो माएँ प्यार से नरमी से बोलती हैं उनको ज्यादा नहीं बोलना पड़ता। क्यों? पहले अपना प्यार दें। वही बात याद रखिए जो आपको भी बताई है, बच्चों को नमाज की मोहब्बत देनी है तो पहले अपनी मोहब्बत दें। आपसे प्यार करेंगे, आप उनको आधा जुमला बोलेंगे, वो कभी नहीं पीछे होंगे, आई लव माई मॉम। वो इंतजार नहीं करेंगे मदर डे का कि उस दिन जाके कहना आई लव माई मॉम। आप उनकी मत ना मारें, वो जैसे कहने थे खिला खिला के उनकी अकल ना मोटी करें, हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, कल कैसे वो मानेंगे? देखिए ना, नो तो सीख ही नहीं बच्चे ने। चिप्स मांगा चिप्स दिया, बिस्किट मांगा बिस्किट दिया, चलते फिरते जानवरों की तरह बच्चा खाएगा, बड़ा होके आपकी नो कैसे सुनेगा? फिर हम खुद भुगतते हैं। बचपन में हमें ये लाड अच्छे लगते हैं, पहले खुद भी काटते हैं, तोतली बातें गालियां सिखाते हैं। कई कल्चर है, लोग कहते हैं उस दिन मिठाई बढ़ती है जिस दिन बच्चा पहली गाली दे आए। अब हो गया मेरा बच्चा गालियां देने वाला, और जिस दिन वो बाप को गालियां खिलाते फिर कहते मेरे तो नसीब ही बुरे। तो बस यही कहूंगी, ये छोटे छोटे पुर्जे हैं, इतने प्यारे इतने स्वीट, कभी पैदा होता न्यू बॉर्न बेबी तो देखिए रुई का गोला, या बिगाड़ लीजिए या संवार लें। बस में हो ना तो खुद को हम पीछे ले जाएं और अपनी आदतें बदलें, अपने ऊपर भी बात करते हैं। लिखिए चंद बातें, सवाल, मुझे अपनी कौन सी आदत ना पसंद है पर मैं कोशिश के बावजूद तो उसको नहीं बदल पाती, उस पे कोशिश कीजिए। यकीन करें बचपन की गुंदी हुई आदतें नहीं छुटती, ऊंची बोलने की आदत ही बोल रहे हैं, हा, हंसने की आदत ही हंस रहे हैं, और जितनी दीवार पर बड़ी होती उतनी पुख्ता हो जाती है। तो वो चीजें अपने बच्चों में ना लाएं। आप देखेंगे कि इससे बहुत ज्यादा आपके बच्चे भी आपकी सुनेंगे। अब सवाल आखिरी करके आगे चलते हैं, और वो क्या कि बिगाड़ चुके अब क्या करें, बड़े हो गए, हमारे कद से ऊपर चला गया बच्चों का कद, क्योंकि अक्सर के जहन में ये सवाल आ रहा होगा, कितनों के हैं जहन में, अब तो बड़े हो गए ना, क्योंकि अब तो वो छोटे थे उनको तो पकड़ पकड़ के ले बैठते थे, अब क्या करें? माफी मांग लें, बच्चों मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे मैंने तुम्हारा हक नहीं दिया, मैंने तुम्हारी वैसे तरबियत नहीं की जैसे करनी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। आओ मिल के सफर शुरू करते हैं, तुम मुझे टोको मैं तुम्हें टोकती हूँ, तुम मुझे रोको मैं तुम्हें रोकती हूँ, तुम मेरे बाजू बनो मैं तुम्हारे बनूं। यकीन करें बच्चे आपके साथ लगेंगे, रो पड़ेंगे, नहीं मामा ऐसे ना कहें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मिन्नतें करके तेरी तुझे बिगाड़ दिया। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह औलादों को आंखों की ठंडक बनाए, और हम भी अपनी औलादों की आंखों की ठंडक हों। बिलीव मी, बाज माए अपने बच्चों की इज्जत नफ्स को ऐसे मजरूह करती हैं, ऐसे मजरूह करती हैं कि अगर कोई उनकी करे ना तो कभी दूसरी दफा उससे बात ना करें। दोस्तों के सामने टोकना, मेहमानों के सामने बेइज्जती कर देनी, दूसरों के सामने उसकी बुराइयां पेश करनी है, उसकी शिकायतें लगानी है, ये अमल ना कीजिए। बड़े हो गए आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, किसी भी जगह बैठकर कोई अच्छी बात करे, इस पे आपको आज इंशाल्लाह लिंक भेजेंगे पेरेंटिंग ए टू जी का, और इसका एक खास टॉपिक था जवान बच्चों से कैसे डील करें, गुस्से वाले बच्चों से कैसे, बिगड़े हुए बच्चों से कैसे। जब मौका मिले रमजान के बाद सुन लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को अपनी बेख्तियाती की वजह से जाया ना करें। कभी हमें मशीन ना चलानी आती और वो हमारी पहली ही कोशिश पे जल के राख हो जाए, कभी अफसोस ही नहीं गया उसका, हाय गलत तरीके से मैंने ऑपरेट की। तो हम में से कुछ लोगों ने अपने बच्चों को भी मिस ऑपरेट किया। साथ लें, वो घर घर नहीं है जहां माँ बाप बच्चे बहन भाई सारे इकट्ठे नहीं बैठते, सेम मसरूफियात, सेम उनकी लाइक माइंडेडनेस। आज के दौर का ये भी एक मसला है। आखिरी बात, लाहौल हदीस में बच्चों को इतना मसरूफ किया, माँ की जरूरत नहीं रही, बाप की जरूरत नहीं रही, बहन भाई की जरूरत नहीं रही। एक पिक्चर आपको भेजेंगे, एक इमेज है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक वो वक्त था कि बच्चे पास आके बैठे होते थे, अब ये वक्त आ गया कि एक टेबल है, इधर बाप इधर माँ इधर बेटा इधर बेटी, चारों के सामने आईपैड आईपॉड और पता नहीं क्या कुछ खुला हुआ। अब घर नेट कैफे बन गए, कई घर ऐसे हैं घर में रहकर चिट चैट पे माँ को बुला रहे होते हैं और माँ को कहते हैं आ रहा हूं, कई लोग हैं घर में रहकर एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं। तो रिश्तों की मिठास को ये चीजें ले गई, अल्लाह ताला हमें हमारी गफलत से निकाल दे।